नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। श्रीलंका में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अपने मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 11 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और इंडिया दोनों गठबंधनों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह, गांडे और बोकारो में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरमो में चुनावी रैली करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ, दुमका और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजद, आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवम्बर को होगी। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची।
निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज हम झारखंड के गिरिडीह जिले की गांडेय विधानसभा सीट पर एक नजर डालते हैं। गांडेय में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा।
गांडे सामान्य विधानसभा क्षेत्र है। कल्पना सोरेन मुर्मू यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की निवर्तमान विधायक हैं। भाजपा ने इस बार मुनिया देवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस सीट पर 6 बार सफलता मिली है। मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन मुर्मू और भाजपा की मुनिया देवी के बीच है। पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। अब देखना है कि कल्पना सोरेन मुर्मू अपनी सीट बरकरार रख पाती हैं या भाजपा की मुनिया देवी अपना खाता खोलने में कामयाब होती हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 66% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक 76% से ज्यादा मतदान खरसावां में दर्ज किया गया। इस चरण में 15 जिलों के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। आयोग ने कहा है कि मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज छत्रपति संभाजी नगर और पनवेल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में भी एक रैली को संबोधित करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि महायुति गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस रैली में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धाराशिव, सोलापुर और सांगली में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज नंदुरबार और नांदेड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्यानगर में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। इसके अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देने को कहा गया है, जिससे उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को गुमराह होने से बचाया जा सके। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए नई दिल्ली में ये दिशा निर्देश जारी किए। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 14 दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष के मेले का विषय है 2047 में विकसित भारत। इस वर्ष का फोकस राज्य झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 देश भाग ले रहे हैं। मेले के पहले 5 दिन 18 नवंबर तक केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आम लोगों के लिए मेला 19 नवंबर से शुरू होगा और 27 नवंबर तक खुला रहेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के महाप्रबंधक शंकरानंद भारती ने इस वर्ष के मेले की मुख्य विशेषताएं और मेले में आगंतुकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया है।
हमने मेले के दौरान किसी भी प्रकार के मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता यदि पड़ती है तो उसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एड बूथ 5 अलग अलग लोकेशंस पे लगाए हैं। एम्बुलेंस किसी भी प्रकार की मेडिकल एड के लिए वहाँ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली सरकारी अस्पताल हैं उनके साथ भी हमने अलर्ट मोड पे रखा है किसी भी एक्सीजेंसी से निपटने के लिए।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए मेले में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों दिनों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। रईसुद्दीन रियान के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों में लोकतांत्रिक मूल्य, बहुलवादी लोकाचार और आर्थिक समानताएं निहित हैं। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मानदंडों और नियमों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में वित्त आयोग के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय विकास के लिए वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ये सम्मेलन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धन के प्रभावी ढंग से आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका पर चर्चा करने और इसमें वृद्धि के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के पेशेवरों तथा विशेषज्ञों से अगले साल 5 से 9 फरवरी तक दिल्ली में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये प्रतिष्ठित सम्मेलन वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला आयोजन है। श्री जाजू ने हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस IGDC में कहा कि यह उच्च श्रेणी का कार्यक्रम पूरे मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तृत सत्र में भाग लेंगे, जबकि केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीलंका में आज नई संसद चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और ये शाम 4 बजे तक चलेगा। संसद की 225 सीटों के लिए कुल 8,800 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक रिपोर्ट।
श्रीलंका की नई सरकार के भविष्य की दिशा में ये संसदीय चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। संसदीय बहुमत से राष्ट्रपति दिसनायका को उन लोकप्रिय उपायों को लागू करने में मदद मिलेगी जिनका उन्होंने वादा किया था। सत्तारूढ़ पार्टी को सजित प्रेमदासा के नेतृत्व वाली सामाजिक जनबल वेगया और पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित विरोधी दलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक संकट, महंगाई और IMF बेलआउट से जुड़ी कठोर नीतियों के कारण बढ़ी हुई आर्थिक चिंताएं प्रमुख चर्चा के विषय रहे हैं। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में पूर्व डेमोक्रेट तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक पद के लिए नामित किया है। चार बार की संसद सदस्य और वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुश्री गबार्ड हाल ही में डेमोक्रेट से रिपब्लिकन सदस्य बनी हैं। श्री ट्रंप ने सांसद मैट गेट्स को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सेनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री नियुक्त करने की भी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के सुधसोना बेहबाग इलाके की घेराबंदी कर आज सुबह फिर से तलाश अभियान शुरू किया। कल दोपहर बाद इस इलाके में आतंकवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस इलाके में फंसे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त बल बुलाए गए हैं और घेराबंदी को और मजबूत किया जा रहा है। अभी तक दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। मधुमेह की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रभावी प्रबंधन और देखभाल तक समान पहुंच में व्यापक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस का विषय अवरोधों को तोड़ना और अंतरालों को कम करना है। यह विषय मधुमेह से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति की उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करता है और देखभाल में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और समुदायों के बीच सहयोग पर जोर देता है। 2023 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ 10 लाख लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में 16 नवंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा में भी आज गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 UI 432 रहा। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया है। भारत ने मेजबान टीम को 220 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सकी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद कनकलता। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, अधिकारी जज नहीं, मनमाने ढंग से घर ढहाने पर उसे खुद के खर्च पर दोबारा बनवाना होगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपित या दोषी होने के आधार पर नहीं की जा सकती कार्रवाई। नवभारत टाइम्स ने इसे शीर्षक दिया है, बुलडोजर न्याय का अतिक्रमण ध्वस्त। हरिभूमि ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, हमारा आदेश अनुच्छेद 142 के तहत। जनसत्ता की हेडलाइन है, देश में सबसे प्रदूषित रही राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंची, 116 दिन दमघोटू हवा के। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, एयर इमरजेंसी के हालात। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ का भी दिल्ली जैसा हाल। हिंदुस्तान ने दिल्ली के रोहिणी में डिजिटल अरेस्ट कर एक बुजुर्ग से 10 करोड़ रुपए ठगे जाने का समाचार पहले पन्ने पर दिया है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में कोटा व्यवस्था लागू होने का समाचार भी अखबारों में है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हिमपात पर देशबंधु के शब्द हैं, बर्फ से सफेद होने लगे पहाड़।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। श्रीलंका में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अपने कैबिनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नामित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।